अब तक हमने पढ़ा था कि ईशान और कशिश के रिश्ते को रजनी और अभिषेक के परिवार ने स्वीकृति दे दी थी और अगले दिन कशिश के घर जाकर बात करने का निर्णय लिया गया था। अब आगे, अभिषेक ईशान से इस बारे में कुछ बात करना चाहता था पर कर नहीं पाया। सबने साथ में रात का खाना खाया, फिर कशिश को वहां छोड़कर ईशान रजनी के साथ चला गया और कशिश जरा भी उदास नहीं हुई। कुछ ही देर में अपने स्वभाव के कारण वो लगभग सभी से खूब घुल मिल गई थी। शेखा से तो उसकी दोस्ती भी हो गई थी। उन्हें देखकर कोई नहीं कह सकता था कि वे कुछ देर पहले ही मिले हैं। ऐसा लग रहा था जैसे वे सालों से एक दूसरे को जानते हों। सगी बहनों जैसी जुगलबंदी थी उनके बीच। दोनों का स्वभाव एक सा था और खाने की मेज पर उनकी मीठी चटपटी मजेदार बातों का सबने खूब आनंद उठाया था। रात के खाने के बाद माधुरी जी ने कशिश को शिखा के साथ उसके कमरे में आराम करने के लिए भेज दिया, जहां दोनों काफी देर तक बातें, मस्ती, मजाक करती रहीं, फिर सो गईं। कशिश को ध्यान तक नहीं था कि कितने वक्त बाद उसने किसी से इतनी बातें की थीं और दिल से इतनी खुश थी। जहां कशिश हर चिंता, फिक्र और परेशानी को भुलाकर बेफिक्र सी सो रही थी, वहीं अगले दिन क्या होगा इस चिंता में ईशान की रात बेचैनी से कटी। जैसा उसने सोचा था कुछ भी वैसा नहीं हो रहा था, पर फिर भी एक उम्मीद थी कि जो होगा महादेव की कृपा से ठीक ही होगा। अगला दिन शुरू हुआ। ईशान छत के किनारे मुंडेर के पास खड़ा दूर दूर तक फैली गंगा मैया के विशाल रूप, चंचल लहरों और घाट पर लगते श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए मन ही मन विचार करने लगा कि क्या वो जो कर रहा है वो सही है। क्या शादी जैसे पवित्र रिश्ते को सौदा बनाना, अपनों को धोखा देना ठीक है? काफी देर तक सोचने और आत्ममंथन करने के बाद भी उसे इन सवालों का कोई जवाब न मिल सका, तो उसने अपने दिल को दिलासा दिया कि जो कर रहा है वो रजनी की खुशी के लिए कर रहा है, तो सब ठीक है। फिर भी उसका मन शांत नहीं हो रहा था। आज उसके चेहरे पर वो रोज वाला सुकून और अधरों पर मुस्कान कहीं नजर न आ सकी। उसने खुद को समझाया और नहाने चला गया। दूसरी तरफ कशिश रात को देर से सोई थी और कई दिनों बाद बिना किसी चिंता फिक्र के सुकून भरी नींद में खोई हुई थी। वैसे भी नींद से गहरी यारी थी उसकी, तो सुबह के 9 बजने पर भी उसकी नींद नहीं खुली। शिखा नहाकर तैयार होकर कॉलेज के लिए निकल चुकी थी। माधुरी जी ने भी पहले कशिश को ये सोचकर नहीं उठाया कि थकी हुई होगी इसलिए नींद नहीं खुली होगी। उन्होंने अपने सारे काम निपटाए। इतने में ईशान भी रजनी के साथ वहां आ गया। अभिषेक नाश्ता करके ऑफिस भी जा चुका था। अरविंद जी भी नाश्ता कर चुके थे। माधुरी जी ने सबको बिठाया, फिर खुद कशिश को जगाने चली गई। कशिश के कमरे में पहुंचकर जब उन्होंने देखा कि कशिश पूरे बिस्तर पर अपने हाथ पैर फैलाए उल्टी पड़ी हुई सोने में लगी थी, तो अनायास ही उनके लबों पर सौम्य सी मुस्कान सज गई। वो कशिश के पास आकर बैठ गई और प्यार से उसके सर पर हाथ फेरते हुए बोली, कशिश बेटा उठ जाओ, सुबह हो गई है। कशिश गहरी नींद में थी। माधुरी जी के ममता भरे स्पर्श को अपनी माँ का स्पर्श समझकर वो नींद में ही उनकी गोद में सर रखकर लेट गई और उनके पेट व कमर पर अपनी बाहों को लपेटे हुए नींद में ही बड़बड़ाने लगी, माँ बहुत नींद आ रही है, थोड़ी देर और सोने दीजिए ना। माधुरी जी समझ गईं कि कशिश नींद में उन्हें अपनी माँ समझ रही है। वे एक पल को चुप रहकर सोचती रहीं कि कितना गहरा रिश्ता रहा होगा उसका अपनी माँ से और उसके यूं घर छोड़कर चले आने से उसकी माँ की क्या दशा होगी। फिर उन्होंने मन ही मन आज सब ठीक होने की कामना की और दोबारा कशिश के सर पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोली, कशिश बेटा नीचे सभी आ चुके हैं, आपका इंतजार कर रहे हैं, जल्दी से उठ जाइए बेटा, फिर आपको नाश्ता करके निकलना भी है वरना ट्रेन छूट जाएगी आपकी। ये सब बातें कशिश के कानों में पड़ी। तब उसे नींद में ही एहसास हुआ कि अब वो अपने घर में नहीं है। कल जो भी हुआ सब उसे एक एक करके याद आने लगा और अगले ही पल में वो एकदम चौंकते हुए उठकर बैठ गई। उसके अचानक उठने से माधुरी जी घबरा गई। कशिश भी पहले आंखें बड़ी बड़ी करके उन्हें देखने लगी, फिर खुद को सामान्य करते हुए बोली, सॉरी आंटी, वो मैं भूल गई थी कि अपने घर पर नहीं हूँ, बस इसलिए जरा हैरान हो गई थी। माधुरी जी भी अब तक सामान्य हो गई थी। उन्होंने प्यार से उसके गाल सहलाए और मुस्कुराकर बोली, कोई बात नहीं बेटा, आदत नहीं आपको, हो जाता है ऐसा कभी कभी, आप इसकी चिंता छोड़िए और जल्दी से नहाकर तैयार होकर नीचे आ जाइए। कशिश ने झट से सहमति में सर हिला दिया और कल जो ईशान ने उसे कपड़े दिलाए थे उन्हें लेकर बाथरूम में चली गई। माधुरी जी ने कमरा व्यवस्थित किया और वहां से नीचे चली आई। कशिश जल्दबाजी में नहाकर तैयार होकर नीचे पहुंची, पर हॉल में बैठे लोगों पर नजर पड़ते ही उसके आगे बढ़ते कदम ठिठक गए। सबकी नजरों को खुद पर देखकर वो थोड़ा असहज भी हो गई। माधुरी जी जो वहीं मौजूद थीं, उसे देखकर तुरंत उसके पास चली आईं और उसके रूप को देखकर चिंता भरे स्वर में बोली, ये क्या बहू, नई नई शादी हुई है आपकी और आपने ना मांग सिंदूर जगाया ना मंगलसूत्र, बिना किसी साज श्रृंगार के ही यहाँ आ गई। लगता है आपको कुछ भी मालूम नहीं। शादीशुदा लड़कियों को अपनी सुहाग की निशानियों को कभी खुद से दूर नहीं करना चाहिए, अभी शुगुन माना जाता है। आप वापस अपने कमरे में जाइए, हम वहीं आते हैं, आपको तैयार कर देंगे। माधुरी जी ने एक माँ की तरह बड़ी ही ममता और प्यार से उसे समझाया। कशिश को अब याद आया कि वो शादीशुदा है, कम से कम बाकियों के लिए तो शादीशुदा ही है, और शादी के बाद अपनी दीदी को देखा था उसने कैसे 16 श्रृंगार करके रहती थी, इसलिए जानती तो सब थी, पर जल्दबाजी में ध्यान ही नहीं दिया उसने। अपनी गलती समझते हुए उसने सर झुका लिया और धीमी सी आवाज में बोली, माफ कीजिएगा, जल्दबाजी में ध्यान नहीं रहा। कोई बात नहीं बेटा, आपके लिए भी तो अचानक सब बदल गया है, तो थोड़ा वक्त लगेगा इस नए रिश्ते के अनुरूप खुद को ढालने में, और हम आपको डांट तो नहीं रहे, बस समझा रहे हैं कि सुहागन लड़की को हमेशा सच संवर कर रहना चाहिए, और कुछ नहीं भी तो सिंदूर और मंगलसूत्र तो होना ही चाहिए। चलिए आप चलिए, हम आते हैं आपके पास, तैयार कर देंगे आपको। माधुरी जी ने एक बार फिर बड़े ही प्यार से उसे समझाया। कशिश ने उनकी बातें सुनकर सर हिला दिया। जाने से पहले एक बार चोर नजरों से ईशान को देखा, जो भावहीन सा उसे ही देख रहा था, फिर जल्दी से वहां से चली गई। माधुरी जी भी अपने कमरे में चली गईं। करीब 20 मिनट बाद वे कशिश को वापस वहां लेकर आईं। लाल बनारसी साड़ी, बीच की मांग निकालकर बालों को चोटी बनाई हुई थी। मांग को सुरख सिंदूर से सजाया गया था। माथे पर दोनों भौहों के बीच छोटी सी लाल बिंदी जगमगा रही थी। होठों पर लाली, कांच की लाल चूड़ियों से भरी कलाई, पैरों में पायल, बिल्कुल नई नवेली दुल्हन जैसे 16 श्रृंगार किए कशिश आज अलग ही कशिश बिखेर रही थी। बला की खूबसूरत लग रही थी वो, उस पर उसकी झुकी पलकें कहर ढा रही थीं। ईशान की नज़र उस पर पड़ी तो एक पल को वो उसके कशिश में खोसा गया, पर जल्दी ही उसने खुद को संभाला और उस पर से निगाहें फेर लीं। बाकी सब उसे देखकर मुस्कुरा दिए, पर कशिश के मन का हाल बस वही समझ रही थी। नाटक की शादी में इतना कुछ करना उसे बहुत अजीब लग रहा था, और साथ ही इतने लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने का दुख भी था, पर अब कुछ भी करने या सोचने का कोई फायदा नहीं था, तीर कमान से निकल चुका था। झूठ का जो जाल उन्होंने फैलाया था, अब उसे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था उनके पास। जिस नाटक का आगाज उन्होंने मिलकर किया था, अब उसे उसके अंजाम तक पहुँचाना ही था।
बाकी सब तो खा चुके थे, तो माधुरी जी ने कशिश को खाना खिलाया। उसके बाद ईशान और कशिश रजनी व अरविंद जी के साथ स्टेशन के लिए निकल गए। स्टेशन पहुंचकर वे दिल्ली के लिए रवाना हो गए। सारे रास्ते अरविंद जी और रजनी कशिश से उसके परिवार के बारे में पूछते रहे। कशिश दिखा नहीं रही थी, पर घर वापस जाने के नाम पर उसके हवा टाइट थी, और उसी घबराहट में वो सारे रास्ते कुछ न कुछ खाती ही रही, जिसे ईशान ने नोटिस भी किया, और कहीं ना कहीं वो उसके मन के हाल को समझ भी रहा था, पर अनजान बने बैठा रहा। शाम के वक्त वे दिल्ली पहुंचे। दिल्ली स्टेशन पर कदम रखते ही कशिश के सीने में जोरों से धड़कने होने लगीं। उसने ईशान की हथेली को कसके पकड़ लिया, जिससे आगे बढ़ते ईशान के कदम ठहर गए। उसने चौंकते हुए पलटकर उसको देखा और निगाहें कशिश के घबराहट भरी निगाहों से टकरा गईं। मुझे वापस ले चलो प्लीज, तुम जो कहोगे मैं सब करूंगी, बस मुझे उस घर में वापस मत लेकर जाओ, मुझे वापस से वहां नहीं जाना। तुम मेरे पापा को नहीं जानते, मैं सगाई के बाद घर से भागी हूँ, वे मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, उनके लिए सबसे ज़रूरी उनकी इज्जत, उनका गुरूर है, वे मुझे नहीं छोड़ेंगे, प्लीज़ मुझे वापस बनारस ले चलो। कशिश बोलते बोलते रुआंसी हो गई। कल से लेकर आज तक में उसने पहली बार कशिश को इस अवस्था में देखा था, और उसकी खौफ से भरी आंखों को देखकर अंदाज़ा लगा पा रहा था कि अपने पापा से कितना डरती है वो। ईशान खामोशी से उसे देखता रहा, जाने क्यों पर कशिश का डर से सना घबराया हुआ चेहरा देखकर उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। अनायास ही कशिश की हथेली पर उसकी पकड़ कस गई और उसने बेहद शांत लहजे में कहा, रिलैक्स, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, भले हमारा रिश्ता सच्चा नहीं, पर मेरे रहते कोई तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा, मैं हिफाजत करूंगा तुम्हारी, बस तुम शांत हो जाओ और विश्वास रखो मुझ पर। जाने उसके कहे चंद शब्दों में ऐसा क्या था कि कशिश का मन एकदम शांत हो गया। ईशान ने इशारे से उसको मुस्कुराने को कहा और कशिश उसका इशारा समझते ही खिलखिला उठी। टैक्सी लेकर सब कशिश के घर की तरफ बढ़ गए। सबके दिमाग में कुछ ना कुछ चल रहा था, सबकी अपनी अपनी उलझने थीं और सभी आगे के बारे में कुछ ना कुछ विचार कर रहे थे। क्या होगा आगे, क्या कशिश का डर सच साबित होगा, उसे सामने देखकर उसके पापा का कैसा रिएक्शन होगा, और क्या ईशान उससे किया वादा निभा पाएगा। जानने के लिए पढ़ते रहिए इश्क मुबारक।